कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर
Yeah.
श्रीमद्भागवतम की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री राधा गोविंद की श्रील प्रभुपाद की। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयम् भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 और श्लोक संख्या है 38। कृपया मेरे बात दोहराए। आत्मनो वसितो वत्स आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविना दिना महिमा कविना दिना संवत्सर सहस्त्रांते संवत्सर सहस्त्रांते धिया योग विपक्यया धिया योग विपक्यया आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविना दिना संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्यया। आत्मनो वत्स संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्यया। संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्यया। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्यया। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्यया। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्यया। शब्दार्थ इस प्रकार से है, आत्मनः परमात्मा की अवसितः ज्ञात वत्स हे पुत्र महिमा महिमा कविना कवि ब्रह्मा द्वारा आदिना आदि संवत्सर दैवी वर्ष सहस्त्र अंते 1000 वर्षों के अंत में धिया बुद्धि द्वारा योग विपक्यया परिपक्व ध्यान द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे पुत्र आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तात्पर्य, कुछ ऐसे कूप मंडूक दार्शनिक हैं जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण यह स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा अकल्पनीय अथवा अचिंत है, तो कूप मंडूक दार्शनिक उनकी निंदा पूर्वक आलोचना करते हैं। ये दार्शनिक उस कूप मंडूक की तरह है जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया था। वे आदि कवि ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण न करके निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा जी ने 1000 दैवी वर्षों तक कठिन ध्यान किया था, फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। अतः एक कूप मंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते हैं? ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि मानसिक चिंतक चिंतन के आकाश में मन या वायु के वेग से करोड़ों वर्षों तक क्यों न उड़ता रहे, फिर भी वह इसे अचिंत्य पाएगा। किंतु भक्तगण ब्रह्म के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद उठाते हैं। भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमासिता भजन्त अनन्य मनुषो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततम् कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य द्रवता नमस्यन्तस्य माम भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। भगवद्गीता का 9वां अध्याय और 13-14 श्लोक है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जिसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती रुक्मणी देवी कहा जाता है। इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के शौकीन नहीं होते, किंतु वे अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। भक्ति का प्राकट्य भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि से ज्ञात होता है। महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें भगवान विषयक पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो वह भक्ति के साधन के द्वारा ही है, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों न बिता दे, किंतु इससे भगवान के धाम में प्रवेश पाने में कोई सहायता नहीं मिलती। किंतु महात्मा गण मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि वे भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमा युक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते हैं। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं और इस जीवन में तथा बाद के जीवन में सुखी रहते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सावदैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखानितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूं वर्गेन वा कल्पिता। श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो प्रातःकालीन इस भागवत सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो प्रतिदिन की तरह भागवत का जो प्रसंग जो चल रहा है, भागवत का ये तृतीय स्कंद और जिसका शीर्षक अध्याय का नाम है विश्वरूप की सृष्टि, मैत्रेय मुनि विदुर जी को इस विश्वरूप की सृष्टि का, भगवान के विश्वरूप का वर्णन मैत्रेय मुनि विदुर जी से कर रहे हैं, जो कि हम श्रवण करते आए। और विशेषतः अभी इस अध्याय का अंत समाप्ति होने वाला है अभी, तो अभी तक जो हमने पिछले एक दो श्लोकों में, हमने दो तीन श्लोकों में सुना कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि जो है वो अपनी नम्रता को व्यक्त किए, नम्रता को व्यक्त करते हुए वो यह कहते हैं कि मैं कि यह भगवान का के विषय में, विशेषतः भगवान की सृष्टि रचना इत्यादि इन सारे के विषय में जो वर्णन करने में मैं अक्षम हूँ, यह उनकी नम्रता को व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ साथ में हमने देखा कि पिछले कुछ एक दो श्लोकों में कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि यह कहते हैं कि भले से मैं अक्षम हूं लेकिन फिर भी मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भगवान के विषय में कुछ कीर्तन या उनका उनके विषय में कुछ कहूंगा, क्योंकि वाणी की पवित्रता इसी में है, होती है कि भगवान के विषय में कुछ कहा जाए, भगवान के विषय में कुछ बोला जाए। इस बात को हमने सुना। और साथ साथ में यह भी कहते हैं कि जो कानों के लिए जो आहार है वह है भगवान का कथामृत, जो कि हमने कल के श्लोक में सुना। तो आज के श्लोक में मैत्रेय मुनि यह वर्णन कर रहे हैं, ये अंत एक और श्लोक है, इसके बाद इस अध्याय का अंत होगा। तो अंतिम विशेषता आज के श्लोक में कंक्लूजन देते हुए वो कहते हैं इस अध्याय का कि जो हे पुत्र संबोधन देते हैं कि हे पुत्र, मैत्रेय मुनि विदुर जी को संबोधन देते हैं कि हे पुत्र, कितनी आत्मीयता है मैत्रेय मुनि का विदुर के प्रति, क्योंकि ये पुत्र जो संबोधन करना कितनी आत्मीयता इससे पता चलता है। तो संबोधन करते हुए मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि ये जो भगवान के विषय में जो जानना, भगवान के विषय में एक्चुअली आदि कवि ब्रह्मा जी जो है वह भी हजारों साल तक दैवी हजारों साल तक वह तपस्या करके ध्यान करने के बाद भी वह इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि भगवान की जो महिमा है अचिंत है, भगवान की महिमा अचिंत है। तो ब्रह्मा जी अगर इस कंक्लूजन पे पहुंचे इतने हजारों दैवी युगों तक तपस्या करने के बाद, तो मैं फिर कहां से इस भगवान के विषय में कितना वर्णन कर पाऊंगा। फिर भी अपनी शुद्धि के लिए, अपनी वाणी की शुद्धि के लिए मैंने थोड़ा बहुत तुमसे चर्चा किया, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी भी तपस्या करने के बाद भी, ध्यान करने के बाद भी, ये विचार करने वाली बात है। वेदव्यास जी जहाँ पे भागवत का प्रारंभ करते हैं तो भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, वहां पे कहते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये आदि कवि ब्रह्मा जी का वर्णन करते हैं जो मैत्रेय मुनि, कि भगवान सर्वप्रथम जो है ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको आदि कवि कहा गया है, वो प्रथम जीव है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, भगवान स्वयं जिसको ज्ञान दिए उनके हृदय में, वो ब्रह्मा भी हजारों दैवी युगों तक तपस्या करने के बाद भी भगवान की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाए, नहीं जान पाए, और यही कंक्लूजन निकाले कि अचिंत है, हम उसको नहीं समझ पाए, पार नहीं पा सकते हैं। तो यही बात को यहाँ पे मैत्रेय मुनि याद करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं नहीं जान पाए, आदि कवि ब्रह्मा जी भी इस बात को नहीं जान पाए, और भगवान की जो महिमा है अचिंत है, अचिंत है, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से ये आज का श्लोक का जो अनुवाद है इस प्रकार से है, आज के श्लोक में मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी, और तात्पर्य में वह यह बताते हैं, सर्वप्रथम तो वह जो दार्शनिक मानसिक चिंतन करने वाले जो भगवान के विषय में जानने का बहुत प्रयास करते हैं, अपने मानसिक अपने मन बुद्धि से जो जानने का भगवान को बहुत प्रयास करते हैं, ऐसे दार्शनिक और मानसिक चिंतकों को प्रभुपाद जी यहाँ पे भर्त्सना कर रहे हैं कि वो कभी भी मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं कि उनका उदाहरण देते हैं कि कूप मंडूक, कुएं में रहने वाला मेढक का उदाहरण देते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, कि कुएं में रहने वाला जो मेढक है वो कुएं को ही उतना कम जगह को ही वो वही मानता है कि यही संसार है, लेकिन वो जब बाहर निकल कर उसको समुद्र में डाला जाता है तो फिर पता चलता है कि कितना बड़ा है, फिर वो समझ नहीं पाता है। तो ये जो दार्शनिक मानसिक चिंतन है वो कितना भी चिंतन कर ले, कितना भी मानसिक चिंतन कर ले, वो भगवान को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। ये बात को प्रभुपाद जी बताते हैं प्रभुपाद जी। इसलिए जो भक्त होते हैं वो ब्रह्मा जी जब ये बता दिया, आदि कवि ब्रह्मा जी बता दिए कि भगवान की महिमा अचिंत है, उसको नहीं समझा जा सकता, तो प्रथम जीव ब्रह्मा जी जब इस बात का कंक्लूजन दे दिए, तो भक्त लोग कभी भी मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, कभी भी प्रयास नहीं करते हैं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय की, जय श्री राधा गोविंद जी की। तो भक्त लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्मा जी ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि भगवान की महिमा अचिंत है, तो अपना मानसिक चिंतन, मानसिक ये सारे बुद्धि को समझने का प्रयास नहीं करते। वो क्या करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह भक्तों के आश्रय में रखे, भगवान के विषय में भगवान का गुणगान करना इत्यादि, कीर्तन करना, ये सारा चीजें श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, भगवान की महिमा को जानते हैं, उनकी लीला कथन का गायन कीर्तन करते हैं, और ऐसे भक्त का भगवान अनुमोदन करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ऐसे जो भक्त है जो कि भक्तों के आश्रय में रहकर भगवान की लीला कथा कीर्तन करते हैं, ऐसे भक्तों का आश्रय ले लेने वाला और उनकी महिमा का गायन करने वाला, और स्वयं भगवान अनुमोदन करते हैं। और भगवद गीता के दो श्लोकों को रखा हुआ है प्रभुपाद जी ने, यह अनुमोदन कर रहे हैं भगवान, महात्मानस तु माम पार्थ दैवी प्रकृति मासितम भजंत अनन्य मनसो भूता दिव्य ज्ञातवा भूता दिव्यम। तो जो दैवी प्रकृति के, जो भगवान के इस अंतरंगा शक्ति, जो दैवी शक्ति है उसके अंतर्गत रहकर ये महात्मा जो है यह भगवान की लीला कथन का गायन करते हैं और कीर्तन करते हैं, वह मानसिक चिंतन से भगवान को समझने का और भरतक प्रयास नहीं करते हैं, वह ब्रह्मा जी के कंक्लूजन से ही समझ जाते हैं कि नहीं पार पाना मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ बातों को यहाँ पे बता रहे हैं, और आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो भक्तगण होते हैं वास्तव में दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति मतलब सीता देवी, राधा रानी, या यहाँ पे लक्ष्मी और रुक्मिणी, ये सब दैवी प्रकृति है भगवान की। तो ये उनके आश्रय में रहते हैं और भगवान की लीला कथाओं के श्रवण करने में रुचि रखते हैं, जो महात्मा गण होते हैं। और ऐसे महात्मा गण ही केवल भक्ति के बल पे, केवल भक्ति के बल पे थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें तो कर सकते हैं, अन्यथा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में अंतिम परिच्छेदों में इस बात को बताते हैं। और ऐसे जो महात्मा गण है, ऐसे महात्मा गण प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं कि वह श्रवण करने में, भगवान की महिमा का श्रवण करने में आनंद लेते हैं, आनंदित होते हैं और आनंद लेते हैं, और इस जीवन में भी वो आनंद को प्राप्त करते हैं और अगले जीवन में भी वो आनंद को प्राप्त करते हैं। ये प्रभुपाद जी अंतिम कंक्लूजन देते हैं इस श्लोक के विषय में। तो ये आज का श्लोक है जहाँ पे मैत्री मुनि विदुर जो को यह बताते हैं कि भगवान की महिमा अचिंत है, स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके ध्यान तपस्या करने के पश्चात वह इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि भगवान की शक्ति, भगवान की महिमा जो अचिंत है, अनंत शेष, अनंत काल से, अनंत शक्ति से, अनंत रूप से भगवान की महिमा का कितना भी गायन करे लेकिन फिर भी वो शेष नहीं कर पाते हैं। ये आज का श्लोक का तात्पर्य है। तभी आज हम, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, दुर्गा पूजा का दिन है, दुर्गा जी का प्राकट्य हो रहा, क्या है अष्टमी, क्या है सप्तमी, जो भी है, दुर्गा पूजा के नाम से आज का दिन जो है विख्यात है, संसार में नवरात्रि का समय चल रहा है। तो आज हम थोड़ा से दुर्गा जी के विषय में, बाकी समय जितना बचा है हम दुर्गा जी के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, विशेषतः दुर्गा की पूजा लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, संसार में हर जगहों पे दुर्गा की पूजा हो रहा है, अलग अलग तरीकों से मना रहे हैं, अलग अलग तरीकों से उसको सेलिब्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं सब लोग, बड़े बड़े पंडाल इत्यादि बनाकर, इत्यादि सब जो भी हम देख ही रहे हैं, रात को एक एक दो दो बजे तक सोसाइटी के अंदर नींद नहीं आता है। तो अलग अलग रूप से सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस दुर्गा के विषय में आज दुर्गा पूजा होने के नाते हम थोड़ा से समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत एक्चुअली वास्तव में बहुत विशेष दिन है क्योंकि हमारे वैष्णव कैलेंडर में भी इसका स्थान है। तो हम देखे कि ये जो विशेष दिन इसलिए है क्योंकि वर्णन है कि भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान जब रावण का दमन करने जा रहे थे, जब रावण को मारने के लिए जब भगवान जा रहे थे उसका दमन करने के लिए, तो उस समय राम और लक्ष्मण ने आज के दिन पे दुर्गा जी की उपासना किया था, दुर्गा जी का उपासना किया था और उनकी पूजा किया था और उनको प्रकट किया था, और प्रकट करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था कि हे माते, आज हम संसार की बहुत बड़ी आसुरी शक्ति को मारने जा रहे हैं, रावण को, जो कि संसार का बहुत बड़ा आसुरी शक्ति है, उसको मारने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कोई अवरोध उत्पन्न न हो, इसलिए उन्होंने दुर्गा, आज के दिन पे दुर्गा की पूजा किया था, राम और लक्ष्मण ने दुर्गा की पूजा किया था। तो प्रश्न उठता है कि भगवान को क्या करने की जरूरत था, भगवान की ही शक्ति है, माया शक्ति भगवान की ही शक्ति है, तो क्या करने की जरूरत था, भगवान को क्या जरूरत था कि दुर्गा को प्रसन्न करने का। तो मैंने एक एक संत से, जहां पे इस रामचरितमानस में जो प्रसंग जहां पे वर्णन है कि भगवान किस तरह से दुर्गा पूजा कर दुर्गा जी को प्रसन्न करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उस प्रसंग पे, उस प्यारों पे लेकर एक संत एक टिप्पणी लिखते हैं कि वास्तव में भगवान इसलिए पूजा किए क्योंकि वह प्रसन्न करके दुर्गा जी को यह बताना चाह रहे हैं कि आज हम संसार के बहुत बड़ी आसुरी शक्ति जिसको मारने जा रहे हैं, हे देवी, वह आपके पति का बहुत बड़ा भक्त है। पार्वती जो है, दुर्गा ही पार्वती है कि वही स्वरूप है, तो आपके पति का वो बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करिए कि कहीं हम उसका दमन करने जा रहा था, आपके पति बीच में ना आ जाए। बहुत सुंदर बात है कि आपके पति बीच में नहीं जाए, आ जाए, आप कृपया थोड़ा शिव जी को रोक के रखिएगा। इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण ने दुर्गा की उपासना किया। तो इस प्रकार से बहुत, इसलिए बहुत विशेष दिन है, भगवान स्वयं इस अपनी ही माया शक्ति का पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो विशेषता आज हम तीन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, दुर्गा जी के विषय में हम तीन विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला कि वास्तव में दुर्गा कौन है और उसका स्थान क्या है, ये पहला विषय। और दूसरा, दुर्गा किस प्रकार से भगवान की एक अच्छी सेवक है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और तीसरा, ये जो दुर्गा है, ये जो भगवान की माया शक्ति है, इसे कैसे पार पाया जाए, ये तीन विषयों के ऊपर आप हम थोड़ा आज संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम कि दुर्गा कौन है और इसका स्थान क्या है, ये विषय जो है। तो हम जानते हैं कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अभी अभी वर्णन आया है विश्व रूप का, जो भागवत चल रहा है अभी, जो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विश्व रूप सृष्टि का वर्णन। भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिसको गिन पाना संभव नहीं है, अनंत अनंत शक्तियां भगवान की। लेकिन इन अनंत शक्तियों में भी दो प्रमुख शक्तियों का वर्णन आता है। एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति जिसको दैवी शक्ति कहते हैं, जो कि चित्त शक्ति है, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शक्ति है। और दूसरा जो शक्ति है वह है बहिरंगा शक्ति भगवान की, बहिरंगा शक्ति जिसको माया शक्ति या महामाया कहते हैं, और ये दुर्गा का स्वरूप है। ये प्रमुखतः दो प्रमुख शक्तियां हैं, ऐसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन प्रमुखतः दो शक्तियों का वर्णन हमको, एक और शक्ति है तटस्था शक्ति जो कि जीव उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रमुखतः भगवान की दो शक्तियां, अंतरंगा शक्ति जो कि योग माया, और चित्त शक्ति जो कि प्रभुपाद आज के तात्पर्य में लिखते हैं ना कि योग जो ये चित्त शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, ये लक्ष्मी रुक्मणी सीता और लक्ष्मी इसका स्वरूप है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और दूसरा भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो कि महामाया, और ये अंतरंगा शक्ति योग माया का ही विकृत स्वरूप जो है महामाया है, योग माया, ये दुर्गा शक्ति जिनका कि आज दुर्गा पूजा और जिनको पूजा चल रहा है आज। तो भगवद गीता में दुर्गा जी के विषय में कई जगह पे वर्णन है, बहुत जगह पर, बहुत सारे श्लोकों में वर्णन है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं दुर्गा जी के विषय में कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने ने कौनते या जगदी परिवर्तते। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मया दक्षिण प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये मेरे अधीनता में है। ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति ही दुर्गा है, प्रकृति जो है ना यही दुर्गा है। तो ये प्रकृति जो है मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, सूयते सता, सारे संसार के चर और अचर जो भी है इससे ही उत्पन्न होते हैं, ये जो मेरी प्रकृति है, है दुर्गा, इससे सारे चर और अचर प्रकट होते हैं। हेतु नाने कौनते जगदी परिवर्तते, और हे कुंती पुत्र, इसके इसके शासन में ही, ये जो प्रकृति है मेरी, जो शक्ति है जो कि मेरे अंडर में रह के कार्य करती है, इसके शासन में ही जगत बार बार सृजन होता है और अंत होता है। इसके ही शासन में जगत ही परिवर्तित है, उसका सृजन और विनष्ट होना उसके ही शासन में होता है। तो ये जो प्रकृति शब्द आया है यही और कुछ नहीं, वो दुर्गा ही है। भगवद गीता में पांच तत्वों का वर्णन हुआ है, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, ये पांच विषय का वर्णन हुआ है, जिसमें से कर्म को छोड़कर बाकी सारे विषय जो है कि शाश्वत है, शाश्वत है। तो इसमें जो ईश्वर जीव प्रकृति, ये जो प्रकृति है भगवान की जो शाश्वत शक्ति है, इसकी अधिष्ठाता देवी जो है वो दुर्गा जी है, इसकी अधिष्ठाता देवी दुर्गा जी है। ब्रह्म संहिता में दुर्गा जी के बारे में बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी, वहां पे कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूम यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी इस ब्रह्म संहिता के इस श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं दुर्गा जी के विषय में कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये जो शक्ति है भगवान की, ये जो प्रकृति है जिससे कि सृष्टि स्थिति और संहार प्रलय, ये सब उसके शासन काल में होता है। और ये कौन है तो कहते हैं कि छायैव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, छायैव ये छाया है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो चित्त शक्ति है, जिसको आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं या जिसको योग या कहते हैं, उसकी क्या है छाया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति की छाया है, छायैव यस्य, ये छाया है, छायैव यस्य भुवन है, जिस भुवन में जिसको विभर्ति दुर्गा, जिसको दुर्गा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि ऐसी दुर्गा जो भगवान की छाया शक्ति है, ऐसी दुर्गा इच्छानुरूप मपि, भगवान जब इच्छा करते हैं, भगवान जब इच्छा करते हैं तो भगवान के इच्छानुरूप वो चेष्टा करती है, मतलब दुर्गा बिना भगवान के इच्छा के कोई कार्य करती ही नहीं है। यहां से ये पता चलता है कि दुर्गा जी जो भी कुछ करती है वो भगवान की इच्छा, भगवान इच्छा करते हैं तभी वो चेष्टा करती है, अन्यथा अपने से और कुछ कार्य दुर्गा नहीं करती है, ये उनकी छाया शक्ति है। और भगवान इच्छा, जो गोविंद इच्छा करते हैं तो ये चेष्टा करती है, और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। लेकिन अभी इस श्लोक के ऊपर, ये ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी इस दुर्गा के बारे में बताते हैं, इस श्लोक के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर ने एक तात्पर्य दिया हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर सा तात्पर्य लिखते हैं इस इच्छानुरूप के ऊपर कि भगवान जो इच्छा करते हैं, क्योंकि वर्णन है कि इच्छानुरूप मपि, भगवान की इच्छा अनुसार वो क्या करती है, कार्य करती है। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान क्या चाह, क्योंकि दुर्गा जी का कार्य क्या है, संसार के सारे जीवों को केवल और केवल तकलीफ देना, दंड देना, तो क्या इच्छा अनुरूप भगवान की यह इच्छा है कि सारे जीवों को तकलीफ मिले, ये प्रश्न कर दे तात्पर्य, ये बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि क्या भगवान की यह इच्छा है कि जीव क्या है तकलीफ में रहे, कष्ट में रहे। तो उत्तर यह है कि हाँ, भगवान चाहते हैं कि ये जीव कष्ट भोगे, इसलिए वो छाया शक्ति दुर्गा का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो जीवों का प्राकट किया, किस लिए किया, क्योंकि भगवान की सेवा में वो लगे, लेकिन कुछ जीव है जो कि अंतर बहिर्मुख हो गए, वो अपने आप भोग, अपने आप को स्वामी मानने लगे, नहीं मुझे अलग भोग करना, आपकी सेवा नहीं करना है, तब भगवान ने भौतिक संसार का सृष्टि किया, तब सृष्टि किया ना, तब सृष्टि किया, और ये सृष्टि करके फिर यहाँ पे दुख भोगेंगे, फिर बाद में फिर से समझेंगे और फिर से भगवान के अंतर्मुख होंगे। तो भगवान एकमात्र, तो इच्छा गोविंद की इच्छा के अनुसार दुर्गा जो है कार्य करती है, ये भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। तो गोविंद की इच्छा है कष्ट देना, हाँ कष्ट देना है, लेकिन एक बात बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर रूप से भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं वहां पे कि लेकिन अगर साधु संतों के किसी इस बहिर्मुख जीव के ऊपर जो कष्ट भोग रहा है दुर्गा जी के प्रताड़ना, जो दुख को सहन कर रहा है, ऐसे जीव, ऐसे बहिर्मुख जीव के ऊपर अगर किसी साधु संत का कृपा हो जाता है, तो साधु संत का जब कृपा होता है तो उस जीव में भगवान के अंतर्मुख होने की इच्छा जागृत होती है। अभी तक बहिर्मुख था, लेकिन साधु संत की कृपा से क्या होता है, अंतर्मुख होने की इच्छा जागृत होता है उसके अंदर। जब अंतर्मुख की इच्छा जागृत होता है तो गोविंद की जो इच्छा, गोविंद इच्छा जो यहां पर कर रहे हैं ना, गोविंद की इच्छा बदल जाती है। फिर गोविंद की इच्छा क्या बदलती है, अभी तक क्या इच्छा था, कष्ट देना, लेकिन साधु संत की कृपा हो जाती है अगर उस जीव के ऊपर, तो उसका अंतर्मुख भगवान के प्रति हो जाता है। और जैसे ही अंतर्मुख होता है, उनके उन्मुख होता है भगवान के प्रति, तो गोविंद की इच्छा बदल जाती है। गोविंद की इच्छा क्या होती है कि मेरे पास आए हो। और जब गोविंद की इच्छा मेरे पास आने की होती है, तो इच्छा जब भगवान की इच्छा के अनुसार ये माया शक्ति कार्य करती है, तो उसको क्या करती है, ये माया शक्ति भगवान के पास लेके जाती है, भगवान के पास लेके जाती है। केवल कष्ट ही देना नहीं, लेकिन अगर उन्मुख हुआ जीव और गोविंद ने, भगवान ने इच्छा किया कि मेरे पास आए, तो क्या करती है, मदद करती है, ये मदद करती है। तो गोविंद की इच्छा जब बदलती है, तो इच्छा के अनुसार ये कार्य करती है। तो यह दुर्गा कृष्ण के पास भी लेके जाती है, हालांकि वो स्वयं से कार्य नहीं करती है, क्योंकि वो स्वयं से एक भी कार्य संसार में नहीं करती है, गोविंद की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। और केवल दंड ही देती है लोगों को। लोग कितना भी दुर्गा की उपासना करके वो भगवान के उन्मुख होने का प्रयास करें, आप वो होगा ही नहीं, ये आशीर्वाद देते ही नहीं दुर्गा। लेकिन साधु संतों की कृपा से अगर भगवान के उन्मुख हो गया ना, तो यही दुर्गा उनको भगवान के पास लेके जाने में भी मदद करती है। ये इसको बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, ये है दुर्गा की रियल कृपा, ये दुर्गा की रियल कृपा है, जिसकी कामना हम भक्तों को करना चाहिए। ये रियल कृपा है, ये रियल कृपा है। तो कपट कृपा का भी वर्णन करते हैं, दुर्गा की कपट कृपा क्या है। तो दुर्गा की कपट कृपा का वर्णन करते कहते हैं कि दुर्गा की कपट कृपा वह है, जो भी दुर्गा का उपासक है, जो कि आजकल चल रहा है संसार में दुर्गा पूजा, जो दुर्गा का उपासक है क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति, घर आए, कष्ट मिटे, तनका इत्यादि इत्यादि बहुत सारे भजन है, ये सारे मांगते ही रहते हैं। और ये वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, दुर्गा ये देती भी है, 100% दुर्गा देती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है सुख संपत्ति और इधर उधर मिटे और मेरे को सुख आएगा, लेकिन वास्तव में सुख नहीं, ये चीजें दे के भी दुर्गा तकलीफ देती है, ये चीजें दे के भी दुर्गा, ये दुर्गा का कपट कृपा है कि संपत्ति को देती है, बहुत सारे सुख देती है, लेकिन वो कपट कृपा है दुर्गा का। तो ये सुंदर रूप से भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। और विशेष करके ये जो दुर्गा कौन है, उनका स्थान जो है, देखिए एक महत्वपूर्ण स्थान है उनका सृजनकार में, सृष्टि, इस श्लोक ब्रह्म संहिता का श्लोक, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन, सृष्टि में भी बहुत बड़ा हाथ है दुर्गा का, बहुत बड़ा हाथ है। ये माँ के समान है, जो 84 लाख क्यों नहीं है ना, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य बिंसादी कृमयो रुद्र संख्या पक्षिणाम दस लक्षणाम चतुर्लक्षाणी मानसा इत्यादि, जो भी 84 लाख योनियों का वर्णन आता है, तो ये 84 लाख योनियों की माँ जो है वो दुर्गा देवी है। सुयताम सचराचरम, चर और अचर जो भी है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, मैया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, चर अचर अचर जो भी संसार में 84 लाख योनियां है, ये उनकी माँ जो है ये दुर्गा देवी है, माँ के समान है। लेकिन भगवद गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात को बताते हैं भगवान, वो कहते हैं कि अर्जुन सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति वा और तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि 84 लाख योनियों की माँ कौन है, दुर्गा देवी है, वो माँ है, लेकिन वास्तव में पिता मैं हूं, अहम बीज प्रदापिता। वो भले से माँ है, लेकिन माँ कभी भी पिता के पिता के छोड़कर वो पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है। भले से 84 लाख योनियों की जीव की माँ है वो, लेकिन कभी भी पुत्र उत्पत्ति नहीं कर सकता जब तक पिता न हो। तो इसी बात को भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अहम बीज प्रदापिता। बहुत बड़ा है संसार में झगड़ा चलता है ना, कि सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये सब करते हैं झगड़ा, मुर्गी आई पहले अंडा आया, ये इसका खंडन करते प्रभुपाद जी, उत्तर भगवान उत्तर देते हैं, वो सब झगड़ा छोड़ो, अहम बीज प्रदापिता, वो क्या झगड़ा करो, बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं, मैं बीज है, वो झगड़ा ही छोड़ दो, अंडा आया पहले मुर्गी आया, सबके बीज प्रदाता पिता मैं हूं। तो भले से 84 लाख योनियों की माँ जो है दुर्गा देवी है, लेकिन बीज प्रदाता पिता वो भगवान है। हालांकि वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, बीच में शिव जी को रखते हैं, वो शिव तत्व को जब भी वर्णन आएगा तो कभी सुनेंगे, तो बीच में शिव जी को रखते हैं, उनको माध्यम बनाते हैं, इसलिए शिव भी पिता के समान है। शिव जी केवल प्रलय ही नहीं करते हैं, ये सृष्टि कार्य में भी बहुत बड़ा भाग है, उसको भगवान माध्यम बना के सृष्टि करते हैं शिव जी के द्वारा ऐसा, तो इसलिए वो जीव तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं शिव जी। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, इनका केवल जन्म जो है भले से 84 लाख उन्हों की जन्मदाता दुर्गा देवी है, लेकिन बीज प्रदाता पिता मैं हूं और मेरे कारण ही ये सब होता है। तो यह संक्षेप में कि दुर्गा कौन है, उनका स्थान क्या है। अभी हम दूसरा विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि दुर्गा जो कि भगवान की अच्छी सेवक है, भगवान की एक अच्छी सेवक है दुर्गा। ये श्रीमद्भागवत में ही इस बात का वर्णन आता है कि जहाँ पे कथा वो बहुत लंबी है लेकिन संक्षेप में मैं स्मरण कराऊं केवल कि जहाँ पे वेदव्यास ऋषि जब ही वेद और शास्त्रों की रचना कर लिया, महापुराण इत्यादि सारे पुराणों की रचना कर लिया, वेदों की रचना कर लिया, लेकिन उनको अंदर असंतुष्टि की भाव जो था, असंतुष्ट थे, तुष्ट हुए ही नहीं थे और चिंता था उनके अंदर कि इतना सारा वेद पुराणों की रचना करने के बाद भी मैं संतुष्टि की जो बात वो आई ही नहीं, मुझे सुख नहीं मिला, चिंतित थे। जब वेद व्यास जी चिंतित थे तो उनके परम गुरु का उस समय उनके ऊपर कृपा हुआ, नारद मुनि का प्राकट हुआ। नारद मुनि उस समय आए, वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर तरीके से उनकी सेवा पूजा किया और फिर उसके बाद नारद मुनि ने बोला कि पूछा क्षेम कैसे है करके, कुशल क्षेम पूछा। तो उस समय वेद व्यास जी कहते हैं कि आप तो त्रिकालज्ञ है प्रभु, आपसे क्या छुपा हुआ है और आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आप सीधा सीधा मैं प्रश्न करता हूँ, मेरे अंदर जो असंतुष्टि की भावना है, मेरे अंदर जो दुख है वो क्यों है, उसका निवारण करिए आप। उस समय नारद मुनि ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, उपदेश बहुत लंबा है लेकिन सार रूप में यही समझिए कि नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बताया कि आपने वेद और पुराणों शास्त्रों की रचना तो अनेक रूप से कर दिया, बहुत सारे बातों को आपने बताया, लेकिन यह केवल और केवल लोगों को प्रभावित करेगा, केवल और केवल लोग मोह को प्राप्त होंगे, केवल और केवल लोग आसक्त होंगे भौतिक चीजों में, कोई भी विरक्ति को प्राप्त नहीं करेगा वो, उसको पूर्ण सुख कभी भी नहीं मिल सकता है वो व्यक्ति को, क्योंकि इतने सारे चीजों को पढ़ने के बाद केवल वो भोग में ही रत रहेगा। आपने वैराग्य वाली चीजें कुछ दिया नहीं है ऐसा, इसलिए आपको खुद को असंतुष्टि है और इस संसार के लोग उसको पढ़ेंगे तो वो खुद भी कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए जिससे व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा, लोगों को भी सुख प्राप्त होगा, जिससे ज्ञान विराग विवेक का नाम ज्ञान वैराग्य और विवेक ये सारी चीजें प्राप्त होगा और वो अंततः परम सुख को प्राप्त करेगा और स्वयं आपको भी संतुष्टि प्राप्त होगा। तो नारद मुनि के इस प्रकार से सुंदर वार्तालाप, बहुत लंबी कथा है, नारद मुनि बता के चले गए और उसके बाद वर्णन है कि वेदव्यास ऋषि उस बद्रीनाथ धाम में अपने कुटिया में ध्यान करने बैठ गए। ध्यान करने के लिए वेदव्यास ऋषि बैठे और ध्यान करते जब बैठे उसका वर्णन भागवतम में आता है, कहते हैं कि भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया च तत्पाश्रयम्। वेदव्यास ऋषि जब ध्यान कर रहे थे, मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूं कि दुर्गा जी किस प्रकार से भगवान की एक अच्छी सेवक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो जब वेदव्यास ऋषि ध्यान कर रहे थे तो ध्यान करते समय वर्णन है वो स्थिति भागवत में कि भक्ति योगे न मन से, कैसे भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्ण रूप से भक्ति योग में नियोजित किए, भक्ति योगे न मन से सम्यक प्रणहिते मले, इस संसार के सारे जितने भी प्रकार के भौतिक मल इत्यादि है सबको दूर करके अपने मन को भक्ति में स्थित करके वो ध्यान करने बैठे। ध्यान कर हुआ क्या फिर, तो अपश्यत पुरुषम पूर्ण, महत्वपूर्ण शब्द है, जो ध्यान करने बैठे तो अपश्यत पुरुषम पूर्ण, सर्वप्रथम उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, ध्यान में कृष्ण का दर्शन किया वेदव्यास ऋषि ने। तो जब कृष्ण का दर्शन हुआ और कृष्ण का दर्शन अकेले नहीं हुआ, कृष्ण के साथ में एक और चीज का दर्शन किया उन्होंने, वो क्या है, मायाम च तदपाश्रयम्। कृष्ण के साथ में उन्होंने दुर्गा का भी दर्शन किया, वेदव्यास ऋषि जब ध्यान कर रहे थे तो कृष्ण के साथ में उनकी माया शक्ति दुर्गा का भी दर्शन उन्होंने किया। और वो दुर्गा कर क्या रही थी, तो इसलिए शब्द आया है अपाश्रयम्, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अपाश्रयम्। वो दुर्गा पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में नियोजित है, पूर्ण रूप से और पूरी तरह से कृष्ण का आश्रय लिए हुई है वो दुर्गा। इस सीन को वेदव्यास ऋषि ध्यान करते समय देख रहे हैं, इस सीन को पूर्ण रूप से वो उनकी सेवा में लगी हुई है। तो यह इस तरह से, और एक चीज और देखा उन्होंने कि किस तरह से जो दुर्गा है भगवान की अंतरंगा शक्ति, अरे बहिरंगा जो शक्ति है, किस प्रकार से इस संसार में जाल बिछा रही, इसको भी देखा। संसार में किस प्रकार से जाल बिछा रहे, तो कहते हैं यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं, कि सारे जीव को मोहित कर रही है और मोहित करके सारे जीव मोहग्रस्त होकर अपने आप को शरीर मान रहे हैं, जो कि वो शरीर नहीं है, लेकिन अब मोहग्रस्त होकर अपने आप को शरीर मानने लगे। इस सारे चीज को भी उन्होंने देखा कि किस प्रकार से माया जो है जाल बिछा रही है, इसका दर्शन वेदव्यास ऋषि उस ध्यान में करते हैं। तो इस प्रकार से दुर्गा जो है भगवान की, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी वर्णन किए कि इच्छा अनुरूप शक्ति उनके इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सेवक है वो। तो इस प्रकार से दुर्गा जी भगवान की बहुत सुंदर तरीके से सेवा करती है। और विषय अंतिम जो मैंने बताया कि बाद पे चर्चा करेंगे, वह है इस दुर्गा जो कि इतना कष्ट दे रहे हैं संसार में, इस दुर्गा जो कि माया स्वरूप दुर्गा, इसके कैसे पार पाया जाए। तो ब्रह्म संहिता के उस श्लोक के ऊपर जो भक्ति विनोद ठाकुर ने तात्पर्य लिखा, उसमें इस दुर्गा शब्द की व्याख्या करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर दुर्गा शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दुर्ग, दुर्ग मतलब क्या, दुर्ग मतलब किला। किला जैसे कि हम देखते हैं ना कि जो बड़े बड़े किले होते हैं, जैसे मथुरा में जन्म स्थान जो किला है, आप देखेंगे कि वहां पे गेट पे सैनिक, बड़े बड़े दरवाजे, दीवाल के ऊपर सैनिक, तो किले के अंदर प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल है। दुर्ग मतलब किला, जिसके अंदर प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफदायक है, क्योंकि हजारों हजारों सैनिक उस दुर्ग उस किले की रक्षा करते हैं, तो उस किले पे रहते हैं। और दूसरा एक बताते हैं, दूसरा शब्द अर्थ बताते हैं कि दुर्ग मतलब कठिनाई, दुख बताते हैं कि ये दुर्ग मतलब दुख और कठिनाई। इस तरह इस जगत को भी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस तरह इस जगत को भी दुर्ग कहा गया है, एक किले, किले के समान है, दुर्ग के समान है, जहां पे क्या है, तो कहते हैं दुखालय में शासन, केवल दुख ही दुख है, दुख केवल और केवल दुख है। तो इस संसार को दुख दुर्ग बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और दुर्गा मतलब क्या, दुर्गा मतलब इस दुर्ग की रखवाली करने वाली और वहां पे जो लोग उनको त्रास देने वाली, तकलीफ देने वाली, वो दुर्गा जो कि दंड देती है। तो दुर्गा का अर्थ क्या करते हैं, कष्ट देने वाली, कष्ट देने वाली। हम देखते भी है दुर्गा का जो स्वरूप है उसका दर्शन करेंगे तो कितने सारे उसके हाथ है दुर्गा के, और सब हाथ में क्या है, अस्त्र और शस्त्र है, केवल मतलब केवल और केवल मारना है उसको लोगों को, और दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं है। अस्त्र शस्त्र से विभूषित है दुर्गा के सारे हाथ, और केवल लोगों को दुख देती है। त्रिशूल, जो त्रिशूल है वो त्रिशूल किसका सूचक है, वो संसार का जो त्रिताप है ना, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, इस ताप को देने वाले त्रिशूल उसका सूचक है, ये त्रिशूल उसका सूचक है। केवल केवल और त्रास, केवल ताप ही देती है, केवल दुख ही देती है, ये उसका कार्य है, भगवान इसके लिए ही उसको रखा हुआ है। तभी प्रश्न यह उठता है कि ये दुर्ग, ये संसार जो दुख का आलय है, जहां पे दुख ही दुख भरा हुआ है, इस दुर्ग को जो कि पार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कैसे पार पाए, इसका भगवान स्वयं भगवद्गीता में इस बात को बताते हैं। क्या बताते हैं, दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति दे, कि ये जो दुर्ग है, ये जो संसार दुर्ग के समान है, जहां पे माया देवी इस सारे लोग को त्रास दे रही है, दुर्गा जी त्रास दे रही है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। स्वयं भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमय मम माया दुरता है, मेरी जो माया शक्ति, इसको पार पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान बताते हैं कि मामे वे प्रबंधन, जब उसको साधु संतों का कृपा प्राप्त होता है, जब वो उन्मुख होता है, तो भगवान इच्छा बदल देते हैं, है ना, अभी बात को बताया मैंने। तो मामे वे प्रबद्ध, जब मेरी शरण में वो जब आ जाता है, तो माया मेता तरंती थे, क्योंकि मेरी इच्छा बदल जाती है और ये जो शक्ति दुर्गा है मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसलिए बहुत आसानी से वो तर जाता है। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कि गाय का जो बछड़ा होता है, वो बारिश के सीजन में वो उसके खुर का निशान पड़ जाता है, गाय भी नहीं बताएगा बछड़ा, मतलब कितना छोटा बताना चाह रहे हैं कि भगवान के शरण में गए तो संसार कितना छोटा हो जाता है, उसको बड़ा आसानी से लांग सकते हैं हम। ये संसार बहुत सागर, बहुत बड़ा सागर के समान है, लेकिन भगवान के शरण में चले जाते हैं तो गाय बछड़े के खुर में जो जल है उसके अनुसार हो जाता है और पार पा जाते हैं। तो इस संसार, इस दुर्ग से मुक्त होना है, पार पाना है, तो केवल एकमात्र भगवान के शरण ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से ये दुर्गा जी का जो प्रताड़ना है वो कम हो जाएगा। एक एक उदाहरण से हम देख सकते हैं कि जैसे कि किसी हवलदार ने पकड़ा, हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, मोबाइल में बात करते हैं, अभी तो बहुत सारे रूल से स्ट्रिक्ट हो गए, तो हवलदार ने पकड़ लिया, तो हवलदार ने पकड़ा तो क्या करता है वो, हाँ फाइन मारता है या फिर बहुत कुछ होता है, हम उससे बचने का प्रयास करते हैं, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, अरे भाई छोड़ दे, ठीक है जान, जो गलती हो गया हो गया। लेकिन ये हवलदार दुर्गा जी के समान है, वो कितना भी रिक्वेस्ट कर ले वो सुनेगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं, सुनेगा नहीं, सुनेगा कितना भी रिक्वेस्ट करना, वो बेकार है रिक्वेस्ट करना, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है उधर, अगर वो रिक्वेस्ट को सुन लिया तो शायद वो उसको डिसमिस कर दे। तो हम क्या कर, अगर हम उससे बचना है तो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमारी पहचान इंस्पेक्टर से है तो हो सकता है कि हाँ ठीक है चलो भाई फोन लगा के दे, साहब देखो ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये हवलदार ने पकड़ा, और तो ठीक है उसको फोन दो, फोन दो, हाँ साहब ठीक है छोड़ देता हूँ, तुरंत छोड़ देगा। तो इंस्पेक्टर जो है भगवान है, हाँ, और ये हवलदार जो दुर्गा है, कितना भी इससे मदद मांगेंगे कि नहीं कष्ट मत दो कष्ट मत दो, कभी छोड़ेगा ही नहीं, कभी वो दुख ही देगी, लेकिन संबंध अगर भगवान से हो गया, हाँ, संबंध उस इंस्पेक्टर से हो गया तो निश्चित रूप से बड़े आसानी से छूट जाएंगे। एक फोन कॉल में छोड़ दिया उसने तुरंत, और कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन वो जैसे कि जेल में कैदी है, वो कैदी जेल में भी हवलदार होते हैं, तो उस हवलदार को कितना भी मदद मांग लो क्या कर सकता है, नहीं, उसको तो ताला खोला, वो तो ताला तभी खोलेगा जब ऊपर का ऑर्डर आएगा, तो उससे रिक्वेस्ट करना ही बेकार है। लेकिन हाँ एक चीज वो कर सकता है, जो हवलदार है एक चीज कर सकता है उस जेल के पास, अगर उससे रिक्वेस्ट करे भाई मेरे को जेल से बाहर निकालो, वो चीज तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, बहुत सारी सुविधाएं दे सकता है, जेल में 5 स्टार की सुविधा दे सकता है, वो 5 स्टार की सुविधा जेल में दे सकता है, वो बहुत सारा अरेंजमेंट कर देगा। अरे और उस जीव को क्या लगने लगता है कि परम सुख की प्राप्ति होगा, क्यों जेल से बाहर जाना है, वो मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए दुर्गा जब सुख भी देती है ना तो हस्तों में दुख है, वो फंसा देती है, कपट है, कपट कृपा है, सुख देती है तो भी फंसा देती है वो। हालांकि वो हवलदार ये बता सकता है, उसको मालूम है, दुर्गा को ये मालूम है, उस हवलदार को ये मालूम है कि अगर ये कभी जेलर आएगा जो मेन व्यक्ति है उसके सामने कभी गिड़गिड़ाया काम बन सकता है, लेकिन वो बात को कभी नहीं बताएगा, वो नहीं बताता है, वो ये बात को तो केवल साधु संत ही बताते हैं, वो नहीं बताता है, और वो क्या करता है बहुत सारे फैसिलिटी सुविधाएं दे देता है, और इसमें वो जीव फंस जाता है। इसलिए धन प्राप्त होने वाला, जैसे संसार में बहुत सारे, अगर धन ही सुख है तो संसार में बहुत सारे धनी है लेकिन फिर भी दुख को प्राप्त है, बहुत दुखी है, और धनी लोग तो ज्यादा दुखी है, क्यों, क्योंकि एक कपट कृपा है दुर्गा जी की, कपट कृपा है। और इसी प्रसंग के ऊपर भगवान अंतिम इस बात बोलते हैं दुर्गा जी के ऊपर ही, भगवद गीता के 18वें अध्याय में, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादत शिष्यति अथ चित्तम अहंकार शिष्यति विनश्यति, कि मत चित्त सर्व दुर्गाणी, यहां पर दुर्गा शब्द आया है दुख, मत चित्त, अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त को मेरे में लगा लेता है तो मत प्रसाद, मेरी प्रसाद उसको प्राप्त होता है, जिससे सर्व दुर्गाणी, सारे दुर्ग जो दुख है वो विनाश हो जाता है उसका। ये भगवान भगवद गीता के अंतिम अध्याय में कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ये भी चेतावनी भी देते हैं कि अहंकार के वशीभूत होकर करता, हमति मन्यते, अहंकार के वशीभूत होकर करता है तो श्रोष्यति विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। ये भगवान अंतिम बात इस बात इस प्रसंग में बोलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वास्तव में जो दुर्गा का कृपा है ना, ये जो धन संपत्ति के रूप में ये दुर्गा का कपट कृपा है, इसमें और लोगों को फंसाती है, और फंसाती है, क्योंकि संसार में जो लक्ष्मी के उपासक है ना, केवल लक्ष्मी के उपासक लक्ष्मी की उपासना करते हैं, केवल लक्ष्मी की उपासना करें, अभी लक्ष्मी पूजा भी आएगा और लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे धन प्राप्त करने के लिए, तो संसार में जो लक्ष्मी के उपासक है उनकी लक्ष्मी का उपासना करने के बाद उनको धन प्राप्त होता है, लेकिन वो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, वो दुर्गा की कृपा है। लक्ष्मी जी का विकृत जो स्वरूप है वह है दुर्गा, उसकी कृपा उनको प्राप्त होता है। क्यों, प्रभुपाद जी लिखते हैं इस संदर्भ में, क्यों क्यों उनको पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी का, कृपा दुर्गा के क्यों मिल रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जो है कभी भी उस स्थान पर नहीं जाती जहां पर नारायण नहीं हो,
तो व्यक्ति अगर लक्ष्मी की पूजा कर रहा है नारायण को छोड़कर, तो वो जो लक्ष्मी है निश्चित रूप से वहां पे नहीं जाती है, वो अपने कपट अपने जो विकृत स्वरूप है दुर्गा उसको भेज देती है, और वो जो धन वहां से प्राप्त हुआ उसको लगता है लक्ष्मी ने दिया, वो लक्ष्मी नहीं वास्तव में दुर्गा जी देती है, वास्तव में दुर्गा जी देती है। इस बात को प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो है पतिव्रता स्त्री है, वो केवल उसी स्थान पर जाती है जहां पर उसका पति है, उस स्थान पर जाती है, बाकी अन्य दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। तो वो जो धन संपत्ति प्राप्त होना भी ये दुर्गा जी की कृपा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि लक्ष्मी केवल और केवल भगवत भक्तों के पास ही जाती है, केवल और केवल जो भगवान के भक्त है उन्हीं के पास जाती है लक्ष्मी, उन्हीं के पास जाती है। जैसे कि सुदामा, सुदामा भगवान के पास गए, भगवान से मिले, उनको कुछ चाहिए नहीं था, कुछ भी मांगा नहीं भगवान से, लेकिन रुक्मिणी ने क्या देखा, रुक्मिणी कौन है, लक्ष्मी का ही स्वरूप है, दैवी शक्ति। रुक्मिणी ने देखा कि ये प्रभु को प्रसन्न किया, उसके द्वारा दिया हुआ जो चावल था उसको खाकर प्रभु बहुत परम प्रसन्न हो गए, तो मेरे पति का सेवा किया, भगवान की सेवा किया, उससे वो संतुष्ट हुए। तो उस समय रुक्मिणी ने क्या किया, कृपा किया, वो दैवी शक्ति रुक्मिणी ने कृपा किया और उसको पूरा वैभव मिल गया सुदामा को। तो ये जो लक्ष्मी जी की कृपा है केवल और केवल मात्र भक्तों को ही प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि संसार में बहुत सारे भगवत भक्त हैं लेकिन इतने सारे भिखारी और कुछ है ही नहीं उनके पास। तो यहाँ पे ये बात मैं सुना कि वास्तव में लक्ष्मी देती है, अगर कोई भगवान की उपासना करता है तो उसके पास स्वयं रूप से दे देती है, लेकिन वो सोच समझ के देती है कहीं उसको प्राप्त करके वो उसका दुरुपयोग न करने लगे, इसलिए उसी को देती है जो संभाल सकता है। ऐसे भक्तों को देती है लक्ष्मी धन जो संभाल सकता है, जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी को लक्ष्मी ने देखा कि पूर्ण शरणागत है, ये संभाल सकता है, इसलिए करोड़ों की संपत्ति दे दिया और प्रभुपाद जी ने उसका यूटिलाइज भी किया, और जिसके कारण हम आज यहां पर बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी एकमात्र और एकमात्र केवल और केवल भगवत भक्तों के पास जाती है, और कहीं ना दूसरे के पास जाती है, मतलब वो दुर्गा का स्वरूप है, वो लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है। अभी आने वाले दिनों में दशहरा है, जहां पे भगवान राम ने रावण को मारा हुआ है, तो त्रेता युग में भगवान ने रावण को मारा, उस रावण को मारा, लेकिन कलयुग में समस्या ये है कि घर घर रावण है। उस समय प्रकट रूप में रावण था जिसको भगवान ने मार गिराया, लेकिन आज कलयुग में घर घर में रावण है, घर घर में रावण है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, भगवान की पत्नी, रावण ने क्या किया था, भगवान की पत्नी का अपहरण कर लिया, भगवान नहीं चाहिए उसको, पत्नी का अपहरण किया। इस संसार के लोग क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी का अपहरण कर रहे हैं, लक्ष्मी चाह रहे हैं लेकिन नारायण नहीं चाहेंगे। ये कभी कभी भक्त लोग जाते हैं उनको समझाते हैं, भाई रामायण नारायण को भी सेवा करो और बाजू में रख दो, तो नहीं समझते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे जो भगवत भक्त है ना, वो हनुमान जी के समान है। हनुमान जी, हनुमान ने क्या किया था कि उस लक्ष्मी, उस सीता को भगवान को लाके मिलाया था। ये भक्त क्या करते हैं, ऐसे जो लक्ष्मी के उपासक है, केवल लक्ष्मी को बात है, वहां से उनके धन संपत्ति उनको लक्ष्मी को लाकर भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये इसलिए भगवत भक्त जो हनुमान के समान है। तो इस प्रकार से उस समय जो स्थूल रावण था त्रेता युग में, उसको तो भगवान राम मारने में समर्थ थे, उन्होंने मारा, लेकिन कलयुग में जो ये घर अंदर रावण बैठा हुआ है, जो कि काम क्रोध मद मत्सर इत्यादि के रूप में अंदर हमारे हृदय में बैठा हुआ है, इस हृदय रूपी जो कलमश है के रूप में रावण बैठा हुआ है, इसको नाश करना है तो एकमात्र केवल भगवान का नाम, तभी ये जो सूक्ष्म रावण है हमारे अंदर उसका नाश होगा। और वह है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त रूप में मैं दुर्गा जी के विषय में कुछ बताया, तो मैं यही समाप्त करते हैं, समय हो गया। हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की वांछा कल्पतरु वेश्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो।